ओम शांति। गीत सुनकर एक हंसी की बात याद आई। इसी हिस्ट्री हॉल में बहुत समय पहले, मेरे ख्याल से 1975, ऑस्ट्रेलिया के चार्ली ब्रदर की ये बात है। बाबा से बहुत प्यार, बाबा को बहुत पत्र लिखे और फिर बाबा से मिलने भी आए। बाबा यहीं पर बैठे थे और सभी से मिल रहे थे इसी हिस्ट्री हॉल में। दादी प्रकाशमणि बाजू बैठे थे, बाजू में सभी बाबा से मिल रहे थे। तो दादी ने चार्ली ब्रदर से कहा कि बाबा से जाकर बात करो, मिलने वाले बहुत कम थे। तो चार्ली ब्रदर बाबा के सामने बैठे। दादी ने कहा हिंदी में बात करो बाबा से और बाबा की आंखों में आंखें डालकर बात करो। तो उनको तो हिंदी आती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कैसे? तो दादी ने कहा कि मैं जो बोलती हूं वो रिपीट करो। फिर दादी ने कहा कि बोलो बाबा से, बाबा मुझे आपसे बहुत प्यार है। तो फिर चार्ली ब्रदर ने कहा कि बाबा मुझे आपसे बहुत प्यार है। फिर दादी की तरफ देखा, दादी ने कहा और बोलो। क्या बोलूं? तो दादी ने कहा बोलो, मैंने आपको बहुत ढूंढा। तो उन्होंने कहा मैंने आपको बहुत ढूंढा और अब आप मिले हो, अब आप मिले हो। मेरे जैसा भाग्यवान इस संसार में और कोई नहीं है। इस तरह से वो बाबा से बात कर रहे थे। दादी ने कहा और गहराई से बात करो, बाबा की आंखों में आंखें डालकर बात करो। अभी उनको जो बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा था, परंतु जो उनको कहा जा रहा था वो बोल रहे थे। तो थोड़े समय के बाद वो इतना प्यार में खो गए बाबा के कि जैसे बाबा की आंखों में आंखें डाले हुए अपलक बाबा को देख रहे हैं। और फिर दादी ने एक बात कही, वो भी उन्होंने कह दी। दादी ने कहा बाबा से बोलो, तो उन्होंने बोला, कहा बाबा मैं एक बंदर हूँ। तो उनको तो पता नहीं था क्या अर्थ है इसका, तो उन्होंने वही बात बोल दी। और सारी की सारी सभा हंसने लगी। तो दादी भी कभी कभी इस तरह की हंसी मजाक भी करते थे। तो गीत सुना तो ये बात याद आई। अब चलते हैं आज की मूर्ति की तरफ। आज बाबा ने भक्ति मार्ग को याद किया है। भक्ति मार्ग की कौन सी बात याद की है? कीर्तन। और क्या याद किया है? राम की कथा को याद किया है। ऐसी बहुत सारी कथाएं भक्ति मार्ग में है, उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है वो है राम कथा। ऐसे ही एक परम राम भक्त हुए हैं, जिनका नाम था रामदास स्वामी। बहुत ही अनूठी राम कथा सुनाते थे। और जैसे भक्ति मार्ग में गायन है कि जहां भी राम कथा होगी वहां कौन बैठते हैं? आके हनुमान जी आकर बैठते हैं। तो राम कथा ऐसी ही एक बार चालू थी। रामदास श्री राम के बहुत बड़े भक्त राम कथा कर रहे थे और हनुमान जी आकर बैठे। ऐसी ही अद्भुत हनुमान कथा राम कथा चालू थी कि सभी खो गए थे। अभी हनुमान तो प्रत्यक्ष दर्शी है, सब कुछ उन्होंने देखा है। भक्ति मार्ग में इस तरह की बातें कही गई है, फिर भी इतने प्यार से सुन रहे थे, इतने आनंद से सुन रहे थे, क्योंकि सुनाने वाले की वाणी में बहुत रस था। नए गीत थे, संगीत था, नई अभिव्यक्तियां थी। अब राम कथा आई हनुमान जी के पास, हनुमान जी का ही प्रसंग उसमें आ गया कि हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में, जहां पर सीता मैया थी अंगूठी लेकर। तो कथाकार ने सुनाया कि जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा चारों तरफ फूल ही फूल है, सफेद सफेद फूल। हनुमान जी ने कहा, सफेद फूल? ये सफेद फूल कहां से आया? यहां तो मैं गया था, सफेद तो फूल थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अब हनुमान जी जो बैठे थे वो तो कंबल ओढ़े बैठे थे ताकि किसी को पता ना चले कि मैं हूं। तो उन्होंने कहा कि फूल सफेद नहीं थे, हाथ खड़ा करके कहा सभा में से। तो कथाकार ने कहा, चुप, फूल सफेद ही थे, मैं कह रहा हूं ना फूल सफेद थे। तो उन्होंने कहा, क्या बात करते हो, ये भी हद हो गई, वहां मैं था और ये फूल सफेद कहां से हो गए, फूल तो लाल ही थे। तो वो अपने कंबल को फेंक के खड़े हो गए और कहा कि देखो मैं कौन हूं, मैं स्वयं हनुमान हूं, और गया मैं गया था कि तुम गए थे, फूल लाल थे। उन्होंने कहा, तुम चाहे हनुमान हो या कोई भी हो, मैं कह रहा हूं ना फूल लाल सफेद थे, तो सफेद ही थे। तो वो कहता, ये तो अब क्या किया जाए, ऐसा अन्याय। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी अभी के अभी सीधा राम जी के पास ले चलता हूं। तो अपने कंधों पर बिठा के रामदास जी को राम जी के पास ले गए और पूछा कि ये ऐसी बात है, अब आप ही बताओ। तो राम जी ने कहा, पहले तो तुम वहां गए ही क्यों, हनुमान जी को क्या कहा, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए थे, और रामदास तो मेरा परम भक्त है, वो जो भी कहता है सत्य ही कहता है। अब हनुमान जी को कहा, को लगा ये तो हद हो गई, गया मैं था, ना तो रामदास गया था ना ही राम गए थे, गया तो मैं ही था, मैं चश्मदीद गवाह तो केवल मैं ही हूं। तो कहते हैं, अभी एक ही मात्र उपाय है, कहां ले चलो, कहां ले के पास चलो, सीता मैया के पास ले चलो, क्योंकि वही एकमात्र गवाह है। तो सीता जी के पास ले जाते हैं और सीता जी को कहते हैं कि मैं जब आपको लेने आया था तो आप बताओ कि फूल सफेद थे या लाल थे, ये कह रहा है कि फूल सफेद थे। सीता मैया कहती है, हो ना हो, फूल सफेद ही थे। हनुमान जी को इतना गुस्सा आता है, अभी कहता है कि ऐसा अन्याय है, पहले तो अंगूठी मैं लेके गया और जो उपद्रव झेले वो मैंने झेले थे, वो क्या कम उपद्रव झेले थे, आग तो मेरी पूछ को लगी थी, ये दिन देखने के लिए कि एक दिन आ जाए और कोई कहे कि फूल सफेद थे। सीता उससे कहती है, फूल तो सफेद ही थे, परंतु तुम इतने क्रोध में थे कि तुम्हारी आंखें लाल लाल हो गई थी, इतना क्रोध तुम्हारी आंखों में था कि जैसे कि सब कुछ तुम्हें जैसा अंदर था वैसा ही बाहर दिखने लगा था, क्रोध का चश्मा तुम पहने थे। तो जैसा चश्मा हम पहनते हैं वैसा ही हमें दिखता है, इसके लिए फूल तो सफेद ही थे परंतु तुम्हारे क्रोध के वजह से तुम्हें सब कुछ लाल ही लाल दिख रहा था। तो बाबा ने आज क्या कहा, चश्मा पहनना फैशन भी है तो मजबूरी भी है, जो जैसा चश्मा पहनेगा उसे वैसा ही दिखाई देगा। प्रभु परिवार, ब्राह्मण परिवार, सभी विशेष आत्माएं, सभी का विशेष पाठ, क्योंकि कौन बताएगा, क्योंकि बाप दादा के सहयोगी है, इस परिवार की सभी आत्माएं बाप दादा के सहयोगी है। तो कीचड़ को देखना है या कमल को देखना है? किसको देखना है? कमल को देखना है। सभी विशेष आत्माएं हैं। जैसे साइंस का उदाहरण बाबा ने दिया, लाल चश्मा पहनो तो हरी वस्तु भी लाल ही नजर आएगी, विशेषता का चश्मा पहनो तो, विशेषता की दृष्टि धारण करो तो हरेक में विशेषता ही नजर आएगी। यदि पहले से ही सोच रखा है कि इनमें कोई विशेषता नहीं है, ये ऐसा ऐसा करते हैं, तो फिर वैसा ही दिखाई देगा। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है? विश्व कल्याणकारी बाप किसको देख रहा है? विश्व कल्याण के, विश्व कल्याणकारी बच्चों को, और किसको देख रहा है? विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। तो हम सभी कौन हैं? विश्व कल्याण के आधार मूर्त आत्माएं। हम सभी कौन हैं? महान आत्माएं। हम सभी कौन हैं? पुण्य आत्माएं। हम सभी कौन हैं? पुरुषोत्तम आत्माएं। हम सभी कौन हैं? देव आत्माएं। हम सभी कौन हैं? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं। सारे कल्प में पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 3। सारे कल्प में क्या? सारे कल्प में हमारे जैसा कोई नहीं है। ताज भी मिला है तो, तख्त भी मिला है तो, तिलक भी मिला है, स्मृति भव का तिलक। तख्त मिला है, दिल तख्त, भगवान का हृदय सिंहासन, उसके हृदय सिंहासन पर हम विराजमान हैं। तो हम सभी विशेष आत्माएं हैं, विशेष युग है, विशेष कुल है, विशेष समय है, विशेष आत्माएं, विशेष परिवार, भगवान की विशेष नजर। हम सब पर किसकी विशेष नजर है? स्वयं भगवान की विशेष नजर है। और हमारी विशेषता को भगवान स्वयं स्पष्ट देखते हैं। कब देखते हैं? सदा। कभी कभी नहीं, हमारी विशेषता उसके सामने सदा ही स्पष्ट है। तो बाबा ने कहा, इस अंतर को देखो। कौन से अंतर को? पहले क्या थे और क्या बन गए। मुरली में दो बातें हैं आज। एक तो ये बात कि पहले क्या थे और अब क्या बन गए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दो के ऊपर सारी मुरली का बेस, सारी मुरली की धुरी। तो क्या थे और क्या बन गए? क्या बन गए अर्थात हमारे अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या बन गए अर्थात हमारे क्या क्या समान है, क्या थे जब अज्ञानी थे, इस अंतर को सामने रखो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएंगे? स्मृति स्वरूप नहीं, महामंत्र स्वरूप हो जाएंगे। कौन सा महामंत्र? आज के वरदान की अंतिम लाइन, मन मना भव। महामंत्र स्वरूप हो जाओगे, मनमना भव स्वरूप हो जाओगे, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाओगे, लोहे की जंजीरें, सूक्ष्म धागे, सारे ही बंधन टूट जाएंगे। कलयुग की वस्तु रसनाएं, देहभान, मन के लगाव, कोई भी आकर्षित नहीं कर पाएगा। विनाशी रस, इंद्रियों के रस, कोई भी आकर्षित नहीं कर पाएगा। सदैव कहाँ रहोगे? अतिंद्रिय सुख में, मन के रस में, मन मना भव की स्थिति स्वरूप में। तो इस अंतर को सामने रखो, किस अंतर को सामने रखो, क्या थे क्या बन गए। पहले क्या थे? बंदर, और अभी क्या है? मंदिर लायक सुंदर बन गए, अभी हसीन बन गए अब। तो क्या थे क्या बन गए, इसके ऊपर बार बार चिंतन करना है। भगवान ने जब हाथ नहीं पकड़ा था तब क्या थे, कैसे थे, कैसी दिनचर्या थी, कैसे बोल थे, कैसे कर्म थे, कैसे संकल्प थे, कैसे स्वप्न थे, कैसी दिनचर्या थी, कैसे संस्कार थे, कैसे संबंध थे, कैसे संपर्क थे, क्या था और क्या बन गया, कहाँ थे कहाँ आ गए, विशेष स्थान पर आ गए, विशेष लोगों के बीच आ गए, विशेष आत्माओं के मध्य में आ गए। तो यह अंतर केवल सामने रखोगे तो क्या हो जाएगा? महामंत्र स्वरूप, ऐसी मनमना भाव की स्थिति स्वतः सहज आ जाएगी बिना किसी युद्ध किए। युद्ध करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? पिछले संडे त्रेता में, चंद्रवंश में, सहज स्वरूप, सहज स्थिति, संघर्ष नहीं जिसमें, सहज याद। और ये तो पहली बात थी। अब दूसरी बात है, ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य है, ब्राह्मणों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। चार चीजें करनी है, चार कर्तव्य है और एक चीज नहीं करनी है। तो कौन कौन से वो चार कर्तव्य है? आज की मुरली से कौन सी चार बातें हैं जो करनी है और कौन सी एक बात है जो करनी नहीं है? सभी ने मुरली सुनी है। सबसे पहला, स्वयं की विशेषता को देखना, स्वयं की विशेषता का विस्तार करना, स्वयं की विशेषता को कार्य में लगाना, स्वयं की विशेषता को फलदायक बनाना, पहला। दूसरा, दूसरों की विशेषता को देखना। तीसरा, वो उससे भी थोड़ा बढ़कर है। पहला तो फिर भी ठीक है, पहले से बढ़कर दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीसरा, और तीसरे से बढ़कर चौथा। तो दूसरा है दूसरों की विशेषता को देखना, तीसरा है दूसरों की विशेषता को कार्य में लगाना। ये इसकी कोई चर्चा बाबा ने विस्तार कुछ भी नहीं किया है मुरली में। दूसरों की विशेषता को कार्य में लगाना, ये चिंतन का विषय है। और चौथा, विशेष संकल्प, विशेष बोल और विशेष कर्म से, विशेष समय, समय को भी सफल करना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर ये चारों ही बातें करनी है और एक बात नहीं करनी है, वो कौन सी? ये चारों ही चीजों को छोड़कर क्या करना? हाँ, ये चारों ही चीजों को छोड़कर कथा कीर्तन नहीं करना है, मंडली नहीं बनानी है कोई। तो एक एक बातों का के विस्तार में जाएंगे। सबसे पहला, अपनी विशेषता को जानना। सबसे पहला क्या? अपनी विशेषता को देखना, अपनी विशेषता को जानना, अपनी विशेषता को फिर कार्य में लगाना। भगवान ने ऐसी किसी भी आत्मा को नहीं चुना है जो विशेष नहीं है। सभी आत्माएं विशेष है, सभी आत्माएं श्रेष्ठ है। ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण, बाबा ने कहा ना आज पार्टियों में, ऊंचे ते ऊंचे है, सबसे श्रेष्ठ है, चोटी है। तो ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं है जिसमें विशेषता नहीं है। स्वयं को विशेष समझना, समान में रहना, उसके विरोध में है अहंकार। अहंकार का संबंध देह से है, समान का संबंध आत्मा से है। हम विशेष आत्माएं हैं, केवल वर्णन करने के लिए नहीं, मुख से कहने के लिए नहीं, अनुभव करना, उस नशे में रहना। मुख से कहने की भी बात नहीं है, उस स्वमान में स्थित रहना कि मुझे स्वयं भगवान ने चुना है। इस संसार की हजारों और करोड़ों आत्माओं से के बीच से मुझे चुना है, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्मा हूं, मैं विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त आत्मा हूं। ये सारे समान दिए हैं बाबा ने आज, इन्हीं समानों में स्वयं को स्थित करना, केवल बोलना नहीं, केवल रिपीट नहीं करना, पुनरुक्ति नहीं करना, परंतु स्थित होना, इस समान को अपने मन में समाने देना और अशरीरी अवस्था में ये करना, अमृत वेले करना, नुमा शाम को करना, दिन भर में बीच बीच में करना, रात को सोते समय करना, लंबा समय तक करना, शांत चित्त से करना, एकांत में करना, मौन में करना, अंतर्मुखी होकर करना, ताकि ये समान रग रग में समा जाए। फिर वो जो हीन भावना है, फिर वे जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम कुछ कर नहीं सकते, कैसे करें, ये हीनता आत्मा का शत्रु है। हीन भावना भी विकार है। अगर अहंकार विकार है तो हीनता की भावना, हम कुछ कर नहीं सकते। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात बाबा ने पिछली बार की थी। लेफ्ट हैंड वो है जो क्या कहते हैं, निराधार होकर कोई सेवा नहीं कर सकते, उनको किसी की आवश्यकता है, संपूर्ण जिम्मेवारी लेकर कोई सेवा नहीं कर सकते। कोई जिम्मेवारी दो तो डरते हैं, सोचते हैं कोई मिल जाए। ये भी सूक्ष्महीन भावना है। भगवान साथ है, कोई भी कार्य असंभव नहीं। खुदाई खिदमतगार अर्थात केवल वो लोग नाम के से क्या करते हैं, असंभव कार्य संभव करते हैं। नाम से ही अगर कोई सहयोग नहीं देता है तो कहते हैं कि खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पर, असहयोगी सहयोगी बन जाता है, असंभव संभव हो जाता है। ना उम्मीदवार कार्य उम्मीदवार बन जाते हैं, तुम्हारे नाम से तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है, खुदा दोस्त है, तो असंभव कैसे हो सकता है कोई भी कार्य। तो ऊंचे समान में रहना, स्वयं की विशेषता को जानना, स्वयं की विशेषता को देखना, समझना, स्वीकार करना, अंतर मन में स्वीकार करना, ये प्रथम कर्तव्य है। विशेषता के लिए बाबा ने पांच शब्दों का प्रयोग किया है आज के मुरली से। विशेषता क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। सबसे पहली बात, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये विशेषता जन्मते ही तुम्हें अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है। तो विशेषता क्या है हमारा? जन्म सिद्ध अधिकार। दूसरा, तकदीर का चमक मस्तक पर जैसे ये सितारा है। विशेषता क्या है? जन्मते ही तुम्हें ये तकदीर का ये सितारा चमक रहा है, तकदीर जगा कर आई हूं। बाबा को ये गीत भूलते नहीं है, पुराने नए बहुत सारे गीत आ गए बाबा पर, पुराने गीतों को अभी भी याद करते। 81 की मुरली है, 69 के पहले चले हुए मुरली है, कल की मुरली, साकार मुरली, गीत क्या था? तकदीर जगा कर आई हूँ। और मुरली की पहली लाइन, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना तो क्या हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। इस मुरली में भी बाबा कह रहे हैं कि सब अपनी तकदीर जगा कर आए हैं, तो सितारा चमक रहा है। दूसरा, तीसरा विशेषता क्या है? तकदीर की लकीर जन्मते ही बाप दादा ने खींची है, तो ये विशेषता क्या है? लकीर। और चौथा वो पांचवा ले लेंगे, उसका विस्तार करना है, क्योंकि चौथा है वरदान। ये विशेषता क्या है? वरदान है, हर एक बच्चे को वरदान मिला है। और पांचवा जो है वो है बीज। तो पहला विशेषता है जनसिद्ध अधिकार, दूसरा तकदीर का चमकता हुआ सितारा, तीसरा तकदीर की लकीर, चौथा वरदान और पांचवा बीच। इस बीच का क्या करोगे? बीज तो दिया है बाबा ने, इस बीज का कुछ करना है। उसमें तीन कैटेगरी है, उसमें तीन वर्गों में विभाजित हो गई है आत्माएं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। पहला जो वर्ग है उनको बीज मिला है, पर उन्होंने क्या किया, लगाया ही नहीं, बोया ही नहीं, या फिर समय पर नहीं बोया, तो क्या हो जाएगा? ये पहला वर्ग है, शक्तिहीन हो जाएगा बीज, क्योंकि बोया ही नहीं, या तो लेट बोया, समय पर नहीं बोया। कौन सा बीज? अपनी विशेषताओं को, कहां बोना है, धरनी कौन सी है, सेवाओं की धरनी है, कैसे बोना है, मनसा वाचा कर्मणा। तो धरनी सेवा की है, बीज हमारी विशेषता है, इस बीज को जिन्होंने बोया ही नहीं, किसी के पास में बहुत अच्छी चिंतन की शक्ति है परंतु कार्य में लगाया ही नहीं, किसी के पास बोलने की कला है, किसी के पास लिखने की कला है, किसी के पास स्थूल सेवा में ऐसे पारंगत है, किसी एक कला में कोई चित्रकार या फिर इस तरह की किसी भी तरह की बहुत सारी सूक्ष्म कलाएं हैं, कोई स्थूल कला, पाक शास्त्र, भोजन बनाने की कला, अलग अलग कलाएं अलग अलग आत्माओं में है, सभी कलाएं एक आत्मा में नहीं है। बाबा ने सबको अपनी कलाओं के आधार पर चुना है। हर एक बच्चा बाप का सहयोगी है, ब्राह्मण परिवार है, विशेष आत्मा है, विशेष पाठ है, हर एक का विशेष कार्य, हर एक की विशेष सेवा है, ऐसे नहीं चुना। किसी किसी के तो एक 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 लाख का कोई एक एक गांव होगा, वहां से एक को चुना, खाली पूरे गांव से एक ही निकला है, तो उसका चयन गलत तो नहीं हो सकता ना। तो बीज है विशेषता, धरनी है सेवा। तो पहला वर्ग जो है उसने क्या कर दिया, बोया ही नहीं, समय से नहीं बोया, बीज व्यर्थ चला गया, बीज शक्तिहीन हो गया, निष्फल हो गया, ये पहला वर्ग। अभी दूसरा वर्ग है, इन्होंने क्या किया, बीज तो बोया, बीज तो बोया, शक्तियों के जल से नहीं सींचा। वृक्ष तो होगा, खड़ा हुआ वृक्ष, परंतु फल रहित, सूखा हुआ, फल नहीं है उस वृक्ष में। वृक्ष तो आ गया परंतु फल नहीं है, हरियाली नहीं है। कौन सी हरियाली? चार हरियाली कौन सी है? उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा, ये क्या है? इस वृक्ष की हरियाली है। जल है सर्व शक्तियों का, शक्तियों के जल से इस वृक्ष को सींचो, अर्थात अर्थात क्या करो, शक्तियां तो योग से मिलेगी ना, केवल सेवा की योग नहीं है, केवल सेवा कर रहे पर जिसकी सेवा है उसी को भूले हुए है, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूले हुए है, वो सेवा नहीं है, केवल वर्क है, केवल वर्क, काम कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे। योग उसमें खुदा को वहां जुदा कर दिया है, खुदाई खिदमतगार नाम है ना, तो खुदा को जुदा कर देते हो, फिर मुश्किल लगता है, फिर सहज नहीं लगता, फिर असफलता होती है, पिछले संडे की मुरली। तो शक्तियों के जल से सींचना है। तो दूसरा वर्ग जो है वो क्या सोचते हैं कि मैंने अपनी विशेषता को कार्य में लगाया, अर्थात ये क्या है, अहंकार, मैं आ गया ना यहां पर, मैंने लगाया अपने कार्य को, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, यह भाव आ गया वहां पर, जो करा रहा है वह भूल गया, करण करावन हाल हार भूल गया और मैंपन जहां आ गया वहां सफलता नहीं होगी। वहां वृक्ष होगा परंतु सूखा, और क्या होगा, यहां पर आंधियां चलेगी, तूफान आएंगे, तो क्या होगा, कभी ये टाली गिरी, डाली गिरी, कभी ये वो टाली गिरी, डाल डालियां तो होगी, शाखा उपशाखाएं भी होगी, ऊपर से बहुत सुंदर भी दिखेगा परंतु फल नहीं होगा। यह है दूसरा वर्ग। अब तीसरा वर्ग कौन सा है? तीसरा वर्ग वो है कि जिन्होंने अपनी विशेषता को जाना, अपनी विशेषता को समझा, बीज को विधि पूर्वक, एक शब्द मुरली में आया है, विधि पूर्वक, विधि पूर्वक बोया, विधि पूर्वक सेवा में लगाया, विधि पूर्वक कार्य में लगाया और फिर शक्तियों के जल से सींचा, मतलब योग युक्त भी है, फिर वृक्ष खड़ा हुआ और वृक्ष में दो फल लगे। कौन कौन से दो फल? सफलता स्वरूप और दूसरा संतुष्टता। स्वयं भी सफलता स्वरूप और दूसरों को भी सफलता स्वरूप बनाने वाले, ये सफलता स्वरूप फल है। और दूसरा फल है, सर्वश्रेष्ठ फल है, वो कौन सा है? स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। कितना अच्छा और कितना सूक्ष्म उदाहरण दिया है बाबा ने। बीज को भी शक्तिशाली बनाओ, शक्तियों के जल से सींचो, मनसा वाचा कर्मणा केवल वर्णन नहीं करो परंतु कार्य में लगाओ, धरनी सेवा की है, फिर ये फल होगा, फिर ये वृक्ष आएगा, फूलों से लदा बदा लदा फलदायक, जिसकी वृक्ष की छाया में न मालूम कितनी आत्माएं आकर विश्राम करेगी, जिसके फल खाकर कितनी ही आत्माएं शक्तिशाली बनेगी। वो फल खाकर पिछले संडे की मुरली आत्माएं कैसी हो गई है? कच्चा फल खाकर शक्तिहीन, नेत्रहीन, बुद्धिहीन, कमजोर, श्रेष्ठ कर्महीन था ना पिछले संडे में, कच्चा फल खाकर। ये पका हुआ फल है। कौन सा फल? संतुष्टता का फल। स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। भक्ति मार्ग की एक देवी को याद किया है बाबा ने। कौन सी देवी को याद किया है? संतोषी माँ। किस किस ने की है संतोषी माँ की भक्ति, जरा हाथ खड़ा करो। बहुत है भाई, भी बहुत है। 16 शुक्रवार किस किस ने किए वो हाथ खड़ा करो अब। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत है। 16 शुक्रवार करने वाले भी बहुत है। अब ये बताओ, ये संतुष्टता की देवी संतोषी माँ आई कहाँ से? ये थोड़ी रिसेंट देवी है। इसका इतिहास अगर जानो तो बड़ा ही रोचक है। इतना रोचक है कि जो कर रहे भक्ति भक्ति करना छोड़ देगी कथा सुनकर, क्योंकि संतोषी माँ का वर्णन किसी भी पुराण में नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है, कोई शास्त्र आज तक बने नहीं है उसके ऊपर। ये रिसेंट गॉडेस है, रिसेंट लेटेस्ट जो अभी अभी आई है। एक्चुअली ये सेलुलॉइड गॉडेस है। सेलुलॉइड अर्थात टीवी 1960 के पहले इस देवी का कोई वर्णन किसी शास्त्र में है नहीं, ना आज तक है, ना ही इसकी कभी कोई पूजा हुई, ना ही कोई मंदिर है। अभी अभी 1960 के 60 के दशक में ये देवी ने अपनी ख्याति पाई है। और जय संतोषी माँ जो फिल्म बनी थी ना 75 में, वो फिल्म इतनी प्रसिद्ध हुई कि तभी से ये देवी आई है देवगणों में, देवीगणों में। इसके पहले इस देवी का कोई अता पता नहीं है। कहते हैं वो जो फिल्म बनी थी, लोग उस फिल्म को देखने के लिए चप्पल बाहर निकाल के जाते थे। और तभी से वो व्रत 16 शुक्रवार और वो सारा कुछ चालू हुआ। उसमें तो दिखाया है वो जो संतोषी देवी है वो किसकी बेटी है? गणेश की बेटी है, रिद्धि सिद्धि और गणेश की बेटी। ऐसी ये लेटेस्ट रिसेंट एंड सेलुलाइट गॉडेस ऑफ कंटेंटमेंट। और फिर तब से इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ, और सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया? माताओं ने, क्योंकि उस देवी ने वो जो थी उसके सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी, धन दौलत सब ठीक हो गया, पति भी ठीक हो गया, सब ठीक हो गए। तो बाबा कह रहे हैं संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये क्या है? फल है। हाँ, तो उसमें ऐसे व्रत है बहुत सारे। और वो देवी, वो क्योंकि गरीबों की देवी है, उसमें व्रत भी गुड़ और सिंगदाना, बहुत ही सिंपल। बाकी देवियां जो है उसमें तो बड़ा चना, बाकी देवियों की डिमांड ज्यादा है, लक्ष्मी सरस्वती काली, गरीब नहीं कर सकते। इसके लिए इस देवी सब एकदम मन को भा गई है माताओं के, इसके लिए उसके इतने मंदिर बन गए और क्या कुछ नहीं हो गया। तो हम वो देवी कौन है? हम है। तो अपनी विशेषताओं को जानना, देखना, पहचानना, कार्य में लगाना, विस्तार करना, फलदायक वृक्ष का निर्माण करना, ये कार्य है हमारा। तो ये था पहला कर्तव्य। अब दूसरा कर्तव्य कौन सा है? दूसरों की विशेषता को देखना। पर अगर दिखाई नहीं दे तो क्या करें? प्रश्न ये है, बहुत कोशिश करते हैं पर क्या करें, इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं है, कितना कोशिश की पर कोई गुण नहीं दिखते, क्या करें? बाबा ने कहा विशेषता का चश्मा पहन लो। ऐसा चश्मा पहन लो तो विशेषता ही नजर आए, चाहे कोई कैसा भी हो। ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कोई भी विशेषता न हो। सूफी संत हुई है राबिया, स्त्री, बहुत ऊंची संत। उसके जीवन में प्रसंग है कि उसकी ऐसी आदत है कि जिसको भी देखती है केवल विशेषताओं को देखती है, विशेषताओं का ही गुणगान करती है। उसका उसके साथ रहने वाला जो एक दूसरा फकीर है हसन, उससे पूछता है क्या ये वास्तव में सही है कि तुम्हें सब में ही विशेषता दिखती है? वो कहती है हाँ। तो वो कहता है क्या मैं एक प्रश्न पूछूं, क्या तुम्हें शैतान में भी विशेषता नजर आती है? शैतान अर्थात हमारी भाषा में विकार, रावण, माया, पांच विकार। तो क्या उत्तर दिया होगा? कौन सी विशेषता? वो कहती है शैतान में मुझे तो, वो तो मेरा सबसे बड़ा गुरु है, उसमें जितनी विशेषता मुझे नजर आती है, मुझे इतनी विशेषता और किसी में भी नजर नहीं आती है। कौन सी विशेषता है इस शैतान में? वो कहती है देखो तो उसका धीरज, मैंने उससे धैर्य को सीखा है। वो असंभव करने का प्रयत्न कर रहा है, परमात्मा को हराने का प्रयत्न कर रहा है, जो कि असंभव कार्य है, परंतु धैर्य को नहीं खोता कभी भी। उसके साहस को तो देखो, क्या कर रहा है वो शैतान? क्या कर रहा है? परमात्मा को हराने का प्रयत्न कर रहा है और हार नहीं मानता, कभी नहीं हारता। तो धैर्य का गुण मैंने उससे सीखा है, जिसे सीखना हो वो सबसे सीखेगा, सभी से। और वो कहती है कि उसी ने तो मुझ में विकार उत्पन्न किए थे, तब कहीं जाकर प्रभु की प्यास उत्पन्न हुई थी, तब कहीं जाकर वो अभिप्सा जागी थी हृदय में, तब कहीं जाकर वो प्यास, वो पिपासा उत्पन्न हुई थी। प्रभु को जानूं, अतीन्द्रिय सुख को जानूं, इन विषय विकारों से मुक्त हूं, उसने हराया था, तब तो कहीं जाकर मैं विजयी बनी। सभी में विशेषताओं को देखना, विशेष आत्माओं का परिवार है, देव कुल की सभी महान आत्माएं बैठी है, कोई साधारण आत्माएं नहीं बैठी है, जिनके बीच हम रहते हैं। ये यज्ञ कुंड महान आत्माओं का कुंड है, किसी को भी साधारण नहीं समझना, चाहे कोई कितना भी साधारण हो। उसमें तीन विशेषताएं तो है ही है। कौन सी तीन विशेषताएं? सबसे पहली विशेषता तो बाप को जान लिया, जिसे कोई जान नहीं सका उसने जान लिया, ये विशेषता तो है कि नहीं? चलो योग नहीं करता, अमृत वेले उठता नहीं है, मुरली में ध्यान नहीं है, मुरली सुनता नहीं है, परंतु भगवान को जाना कि नहीं जाना, ये विशेषता तो है एक। दूसरी, पवित्रता को तो धारण किया है ना, पवित्र तो जी रहा है, पवित्र जीवन व्यतीत कर रहा है, पवित्रता की प्रतिज्ञा तो की ही है। उन जैसे संसार के लोग जिस तरह विकार में जा रहे उस तरह तो नहीं है ना। और तीसरा, अपने जीवन को मनसा वाचा कर्मणा चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल रीति से भगवान के आगे समर्पण तो किया है ना, भगवान के सहयोगी तो बने हैं ना, तो ये विशेषताएं क्या कम है। बाबा कह रहे हैं बाप दादा की विशेष नजर है और हरेक की विशेषता बाप दादा के सामने स्पष्ट है, धुंधली सी नहीं है, स्पष्ट है। संसार के नवयुवक क्या कर रहे हैं और बाबा के कुमार क्या कर रहे हैं, संसार की जो माता है वो क्या कर रही है और यहां बाबा की जो माता है वो क्या कर रही है, तो विशेष हुए ना सभी। तो दूसरों की विशेषता को देखना, जानना, वर्णन करना है तो उसी का वर्णन करना, कीर्तन करने की आदत है ना भक्ति की तो इसका कीर्तन करना, किसका कीर्तन, एक दूसरों के विशेषताओं का गुणगान करना, गुणानुवाद कीर्तन करना, प्रशंसा करना। दूसरा, तीसरा कार्य थोड़ा कठिन है, वो कौन सा, दूसरों की विशेषता को कार्य में लगाना, ये थोड़ा ऊंचा पुरुषार्थ है, उसके लिए हमारी स्थिति बहुत ऊंची चाहिए, हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ चाहिए। केवल उसकी विशेषता को जानना परखना पड़ेगा पहले तो, ये कौन सी सेवा कर सकता है, कैसी सेवा कर सकता है, कौन से इसमें गुण है, इस विशेषता को यज्ञ में कहां लगाया जा सकता है, ये बहुत ऊंचा गुण है, बहुत ऊंची क्वालिटी है, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ भी है, दूसरों की विशेषता को कार्य में लगाना। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है दादी प्रकाशमणि का, शांतिवन में एक भाई है, नाम बता देता हूं, चलो संजय भाई, किचन में है, बहुत संघर्ष, तीन भाई है, बूढ़ी मां, मां ने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष, और ऐसे तीन रतन, तीनों ही मधुबन में आना चाहते हैं, बहुत समय पहले की बात, 20 साल लगभग, उससे भी ज्यादा होंगे। तो दादी प्रकाशमणि ने इतना सुंदर निर्णय दिया था उन तीनों के लिए, क्या किया जाए, तीनों ही यहां आना चाहते हैं। दादी ने कहा एक बेटा मधुबन में रहेगा, एक बेटा मां की सेवा करेगा, तीसरा बेटा नौकरी करेगा, यह निर्णय दिया था। जानते हैं संजय भाई को, नीचे है शांतिवन में, तो एक बेटा मधुबन में है, दूसरा जो भाई है वो लौकिक भाई जो मां की सेवा कर रहा है, गांव में छोटा सा गांव है, शेव गांव, और तीसरा भाई है जो कि नौकरी कर रहा है। जो तब दादी ने कहा था, जो निर्णय तब दिया था, वो आज तक भी वैसे ही कर रहे हैं। कौन क्या कर सकता है, किसको कहां रखा जाए, दूसरों की विशेषता को कैसे कार्य में लगाया जाए, ये बहुत ऊंचा गुण है, इसमें परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सारी ही शक्तियां चाहिए। कैसे इसकी विशेषता को कार्य में लगाए, यज्ञ में ये कैसे सहयोगी हो जाए। हम देखते हैं कोई सेवाधारी आया, उसको अगर कोई डिपार्टमेंट मिल जाए वहां गलतियां करता है, जो भी डिपार्टमेंट दिया वहां गलतियां करता है, परंतु ये परख लेना कि इसको कौन सी सेवा दी जाए, किस सेवा के ये लायक है, अगर कोई ये परख ले तो उसकी वो जो कला, उसका वो जो हुनर, उसका वो जो फन इस यज्ञ में कार्य में लग जाएगा। तो ये जो गुण है बहुत ऊंचा है, कौन सा, दूसरों की विशेषता को कार्य में लगाना। चौथा कौन सा कर्तव्य है ब्राह्मणों का, विशेष संकल्प, विशेष बोल और विशेष कर्म। विशेष संकल्प है समान, विशेष बोल है समान युक्त बोल, विशेष कर्म है याद में रहकर किए हुए कर्म, आत्माभिमानी स्थिति में रहकर किए हुए कर्म, और तीसरा श्रीमत प्रमाण किए हुए कर्म। ये तीन चीजें चाहिए, आत्माभिमानी स्थिति, याद और श्रीमत। जो भी कर्म इन तीन अवस्थाओं में किए जाते हैं वो सारे ही कर्म कैसे होते हैं? श्रेष्ठ, महान, एलिवेटेड एक्शंस। ऐसा अगर हो तो विशेष समय बच जाएगा, वो विशेष समय सेवा में लग जाएगा और फिर प्रत्यक्ष फल होगा। स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट, स्वयं भी सफलता स्वरूप, दूसरों भी सफलता स्वरूप, स्वयं भी निर्विघ्न, दूसरे भी निर्विघ्न। पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर टू। इस सेवा में यदि बिजी रहो तो क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्विघ्न हो जाएंगे, दूसरे भी निर्विघ्न हो जाएंगे, दूसरों के प्रति भी विघ्न विनाशक ये स्थिति आ जाएगी। वो मनसा सेवा के लिए कहा है वहां पर, परंतु यहां पर भी लागू है। यदि फ्री रहे तो व्यर्थ आएगा। अभी जो नहीं करना है वो बात, कौन सी चीज नहीं करनी है अभी? कीर्तन मंडली। पहला तो ये चारों ही चीजें न करते हुए कुछ और करना। क्या करना? विशेष जो समय है उसको व्यर्थ गवाना। किसमें व्यर्थ गवाना? स्वयं की कमजोरी का वर्णन करना और दूसरों की कमजोरी का वर्णन करना। इससे भी मजे की बात, बाबा ने क्या कहा, क्या बना देते हैं? कीर्तन मंडली। और उसमें मनोरंजन होता है, उसमें रस होता है, उसमें बड़ी दिलचस्प बातें होती है। यहां पर भी यदि जैसे बाहर के लोगों को क्या कहते हो कि भक्ति का फल प्राप्त करने आओ, राजयोगी बनो, मेहनत छोड़ो, तो क्या कहते हैं? उनको रस उसी में है। वैसे यहां पर भी अगर किसी को कहो कि मंडली छोड़ो तो बड़ा मनोरंजन वही लगता है। बड़ा मनोरंजन कहा बाबा ने, वो तो मनोरंजन भक्ति वालों के लिए कहा मनोरंजन, यहां बड़ा मनोरंजन कौन सा? स्वयं की कमी का वर्णन करना और दूसरों की कमी का वर्णन करना, अर्थात निंदा करना। हिंदी में एक शब्द है निंदा सुख। कौन सा शब्द है? निंदा सुख। निंदा सुख अर्थात दूसरों की निंदा कर बहुत खुश होना, बहुत अच्छा लगना, और फिर ग्रुप बनाना उसका। समय अच्छा बीतता, पर बाबा ने कहा स्वयं में भी विघ्न आएंगे और सामने सेवाओं में भी विघ्न आएंगे, ईर्ष्या उत्पन्न होगी। एक दूसरों की निंदा करना, वातावरण दूषित होता है। वातावरण ये तो बहुत बड़ा पाप है जैसे कि, और हम में से हर एक कभी ना कभी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मना, किसी ना किसी रूप से, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, परोक्ष अपरोक्ष रूप से कभी ना कभी निंदा जरूर करता है, परंतु वो मानने को तैयार नहीं है कि ये निंदा है, हमने जो किया वो निंदा है, परंतु करते जरूर है। जैसे कि उदाहरण एक दिया है, या फिर कोई आगे बढ़ रहा है उसको नीचे खींचना। एक उदाहरण है, जैसे एक मछुआ था एक तालाब में गांव के किनारे मछली पकड़ता था। दो बड़ी बड़ी बकेट उसके पास थी, एक में मछलियां डालता था तो दूसरी में केकड़े, लॉबस्टर इंग्लिश में जिसको कहते हैं, वो डालता था। जो मछली वाली जो बकेट थी, टोकरी थी, उसको कवर करके रखता था, ढक्कन रखता था, परंतु जो केकड़े वाली थी उसको कुछ नहीं करता था। एक राजनीतिक वहां से गुजरता था, उसने पूछा भाई ये देखो केकड़े बिलबिला रहे, बाहर कूदने का प्रयत्न कर रहे हैं, तुम इनको क्यों नहीं कवर करते, इनको क्यों नहीं ढकते, और वो मछलियों को तुमने ढक रखा है? वो कहता है कि इसमें बड़ी राजनीति है, इनको ढकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह से मैं बैठा हूं, दोपहर होने को आई है, 25 केकड़े तो उसमें है, परंतु जब भी एक बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे दो उसको नीचे खींचते हैं। भारतीय केकड़े तो ये जो राजनीति है, इस वजह से जो दिल्ली में हो रहा है वो यही हो रहा है, ऐसा वो उसको कहता है। तो एक दूसरों की निंदा करना, एक दूसरों के प्रति फिर ईर्ष्या उत्पन्न होना, एक दूसरे को नीचे खींचना, टांग अड़ाना, बाधा बनना, विघ्न बनना, चाहे वो किसी के योग में, चाहे किसी के ज्ञान में, चाहे किसी की सेवा में, चाहे किसी की धारणाओं में, ये सारे चीजें सब उसमें आ गई। ये जो मंडली है, एक तो वो मंडली है स्थूल वाली, एक दूसरी आज के युग में, डिजिटल युग में एक नई मंडली तैयार हुई है। कौन सी है वो? एक तो व्हाट्सएप वाली भी मंडली है, ग्रुप्स भी इतने रोज बनाते हैं, इतने रोज बनाते हैं, नए नए ग्रुप्स बनाते हैं, और उसमें व्यर्थ नाम है सेवा। ग्रुप का नाम भी जैसे सेवा का कोई नाम है, परंतु अंदर केवल व्यर्थ भरा पड़ा है। और हर एक सोचता है मैं ग्रुप बनाऊं, और नए नए ग्रुप बनाते हैं और व्यर्थ की मंडली है। फेसबुक के ग्रुप्स, ईमेल के ग्रुप्स, ट्विटर के ग्रुप, फॉलोइंग कितने और फॉलो किसको किसको कर रहे हैं, ये सब भी क्या है? मंडली है, व्यर्थ की मंडली। इन सभी से मुक्त हो जाना है। सेवा अर्थात सेवा के लिए बहुत अच्छे साधन है, परंतु वो सेवा के लिए ही रहे, वो राम कथा की मंडली ना बन जाए कि जिसमें व्यर्थ प्रवेश कर जाए और हमारा सेवा का समय उसमें चला जाए। इसके लिए आज के युग में जो डिजिटल माया जो है, इलेक्ट्रॉनिक माया, वो ये है, नए नए व्हाट्सएप के ग्रुप, ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के ग्रुप। तो सभी योग युक्त स्थिति में बैठ जाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा, उसके बाद जो बाबा ने पांच ग्रुप से बात की है वो पांच योग के अभ्यास है जो हमें अगले आने वाले पांच दिन करना है, एक एक दिन एक एक अभ्यास, उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सभी समान, जितने अभी बाबा ने कहे, अपनी विशेषताओं के समान में स्थित हो जाए। अगले 5 दिन के लिए 5 योग के अभ्यास, अगले 5 दिन के लिए 5 योग के अभ्यास। सबसे पहला, योग का अभ्यास अर्थात केवल अमृत वेले ही नहीं, परंतु सारे दिन भर में ये अभ्यास करने हैं। पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 1। किस समान में स्थित होना है? मैं शांति, शांति देव हूं। अशरीरी बनने की विधि है शरीर से अलग हो जाना। ना रहेगा शरीर और ना रहेगी आवाज, आवाज से परे जाने की ये विधि है। तो साइलेंस स्वरूप में स्थित होना, ये शांति कैसी चीज है? सबसे शक्तिशाली चीज है, सबसे प्यारी प्रिय वस्तु है। आजकल सबको शांति ही चाहिए, तो स्वयं शांत स्वरूप में स्थित हो जाना। अशांत वातावरण के बीच रहते हुए भी, अशांत आत्माओं के संपर्क में आते हुए भी स्वयं शांत स्वरूप में रहना, ये साइलेंस स्वरूप में रहना ही शांति का दान करना है। तो सारे दिन भर कौन सा अभ्यास करना है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति देव हूं, मैं साइलेंस स्वरूप हूं, मुझे सारे विश्व को शांति का दान देना है। इस शांति में सारी बातें आ जाती है। बाबा ने कहा ये दान सबसे बड़ा दान है, महादान है। विश्व की आत्माएं अशांत है, ऐसा कोई भी घर नहीं आज कि जहां शांति है, सब जगह अशांति ही अशांति है। तो हमें इस स्थान पर बैठकर क्या करना है? सारे ही दिन भर यह अभ्यास बहुत गहराई से करना है, बार बार करना है, कर्म करते हुए करना है। जो छोटे छोटे कर्म हम कर रहे हैं उन कर्मों के समय इस अभ्यास को करना है कि मैं साइलेंस स्वरूप आत्मा हूं। इस साइलेंस स्वरूप में रहना ही शांति में स्थित होना है। शांति साइलेंस, ठीक है? ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, हम सब कौन है? मास्टर ज्ञान सूर्य। क्या करना है? ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेनी है और ये शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलानी है। बाबा ने कहा यही एक मात्र तुम्हारा कर्तव्य है, बाकी सब निमित्त मात्र है। यही विशेष कर्तव्य है। जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं वो तो है ही कर्तव्य, परंतु सबसे मुख्य कर्तव्य, अगर वो कर्तव्य नहीं किया तो सेवा की ही नहीं। कौन सा कर्तव्य है? वो है मास्टर ज्ञान सूर्य के समान में स्थित होना और विश्व को शक्तियां देना। इसी में बिजी रहना, इसी में तत्पर रहना है तो विघ्न विनाशक स्वयं और दूसरों के प्रति भी विघ्न विनाशक बनेंगे। यज्ञ को विघ्नों से मुक्त करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विश्व को तो करना ही है, यज्ञ को, सभी सेवा केंद्र को विघ्नों से मुक्त करना है। तो किस समान में स्थित होंगे? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही है। कब करना है? सुबह अमृत वेला नहीं, सारे दिन भर। कैसे करना है? बहुत ही सूक्ष्मता से, गहराई से, बार बार। यह है दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास प्रेम वाला अभ्यास है, ताज, तख्त और तिलक। क्या करना है? ताज और तख्त, सूक्ष्म वतन में जाकर जैसे बाबा हमें ताज पहना रहा है, पवित्रता का ताज, जिम्मेवारी का ताज, तिलक दे रहा है स्मृति भव, और तख्त कौन सा? ऐसा तख्त जो सारे विश्व में कहीं पर भी नहीं है, सतयुग में भी नहीं होगा। सोने का होगा, हीरो का होगा, परंतु दिल तख्त प्रभु का हृदय सिंहासन वो अब प्राप्त है। भक्ति में तो गायन है हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, तुम हमारे हृदय में विराजमान हो। यहां मामला बहुत आगे बढ़ा है, यहां उसके हृदय में हम विराजमान हैं। दिल तख्त नशीन हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, यहां हरि के हृदय में हम विहार कर रहे हैं, वहां भक्त के हृदय में हरि विहारी, यहां उसके हृदय में हम हैं, मतलब उसके प्यारे। तो ये समान है, सारे कल्प में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। ऐसा नशा, ऐसी खुशी में झूमते रहो, बाबा ने कहा। ये तीसरा दिन, तीसरा योग का प्रयोग, चौथा मैं लाइट हाउस हूँ, सारे विश्व को लाइट देने वाला। जैसे लाइट हाउस होता है, क्या करता है लाइट हाउस, राह दिखाता है भटके हुए को, वैसे हम में भी वो सारी सामग्री होनी चाहिए। यदि लाइट में खुद ही लाइट ना हो तो दूसरों को क्या लाइट दे, इसके लिए वो सारी सामग्री हमारे अंदर होनी चाहिए। यही रूहानी सेवा है, यही महादान है, यही दान देना। यह दान देना अर्थात बढ़ना, कौन सा दान, लाइट का दान। मैं लाइट हाउस हूं, लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर। कितना सुंदर शब्द बाबा ने प्रयोग किया है, जैसे वैसे अक्षरशा उसका अनुवाद ज्योति का घर, तो ये सो मान लिया जा सकता है मैं ज्योति का घर हूं, प्रकाश से परिपूर्ण, सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला, मेरे आलोक से विश्व प्रकाशित होगा। चौथा दिन, पांचवा दिन, पांचवे दिन में संगम युग के समय की महिमा की है बाबा ने, ये वरदानी समय है। तो क्या करना है, विधाता से सर्व वरदान लेने हैं। ये काम तीनों ही जगह किया जा सकता है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, या फिर यहां पर, या फिर परम धाम में भी। यहां पर ही बैठे बैठे जैसे विधाता मेरे सामने है, उसने हाथ रख दिया है और सारे वरदान मुझे दे रहा है, वरदानों का खजाना भरपूर है, खुला है। तो बनना है तो संपन्न बनो, करना है तो संपन्न बनना है, लेना है तो नंबर वन लेना है। थोड़े में राजी नहीं हो जाना है, थोड़े में खुश नहीं हो जाना है, माला माल बनना है। माला माल शब्द का प्रयोग किया है बाबा ने, संतुष्ट नहीं होना है थोड़े में, सारी जायदाद ले लेना है, सारे वरदान ले लेना है। वरदान लेना अर्थात जीवन में धारण करना, केवल रटना नहीं, केवल पढ़ना नहीं, केवल स्मृति में रखना नहीं, मेमोराइज करना नहीं, परंतु धारण करना, स्वरूप बनना, समाना। तो पांचवा योग का अभ्यास कौन सा है, अपने अंदर सारे वरदान ले लेना, धारण कर लेना। फिर बाबा ने एक त्रिकोण यहां बताया है, बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लिस, संतुलन। अगर जीवन में बैलेंस अर्थात संतुलन होगा तो फिर क्या होगा, ब्लिस, आनंद होगा, और आनंद है तो ब्लिस। ब्लेस अर्थात दुआएं देना लेना, यह क्या है, विशेष सौगात है, यही रिफ्रेशमेंट है यहां की। तो ये तीन चीजें हमेशा याद रखना, जैसे त्रिकोण निकालो, ऊपर बैलेंस, एक तरफ ब्लिस आनंद, और तीसरी तरफ ब्लिस, ब्लिस ब्लेसिंग देना और लेना, ये सौगात है, दुआएं देना और लेना। तो ये पांच योग के प्रयोग है। इन पांच योग के प्रयोग, पार्टियों से मुलाकात को फिर से एक बार पढ़ना और उनको योग में परिणित कर दो, योग में कन्वर्ट कर दो, थियोरी जो है उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दो। इसी का अर्थ है जीवन में वो समाएगा, ताकि वो फलीभूत होगा। दो गद्दिया, दिल्ली और कलकत्ता, इनको भी बाबा ने याद किया, एक राज, एक प्रवेशता की चाबी। तो आज की मुरली को फिर से एक बार मनन करना, और यहां जो बातें सुनी, यहां से जाने के बाद सोते समय क्या क्या हमें याद आता है, उसको याद करते 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 बाबा की गोद में सो जाना। ऐसे विशेषता को देखने वाले बच्चों को, ऐसे विशेषता को कार्य में लगाने वाले बच्चों को, ऐसी विशेष आत्माओं को ऐसे विशेष समय सेवा में लगाए, प्रत्यक्ष फल खाने वाले बच्चों को, ऐसी संतुष्ट आत्माओं को अपनी संतुष्टता से की किरणों से दूसरों को संतुष्ट करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।